नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समुद्री क्षेत्र से संबंधित 7,870 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
आज शुरू की जाने वाली परियोजनाओं में अकेले समुद्र क्षेत्र की परियोजनाओं का मूल्य 7,800 करोड़ से अधिक है। इनमें मुंबई में एक नया क्रूज टर्मिनल, कोलकाता और पारादीप जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर नई कंटेनर सुविधाएं और कंडला के दीनदयाल बंदरगाह पर ग्रीन बायो मेथेनॉल प्लांट जैसी प्रमुख परियोजनाएं शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात के लिए 26,300 करोड़ से अधिक की कई नई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें छारा बंदरगाह पर एलएनजी टर्मिनल जैसे नए ऊर्जा संयंत्र और 70 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग की 4 मार्गीय परियोजना शामिल है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नौवहन, रक्षा, संपर्क और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में विकास का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मित्सोताकिस ने पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र समापन और 2026 में भारत में आयोजित होने वाले एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के लिए समर्थन व्यक्त किया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल S-400 रक्षा प्रणाली को एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए इसकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि S-400 से पाकिस्तान को कड़ा और करारा झटका लगा और इस प्रणाली के लंबी दूरी के रडार और मिसाइलों ने दुश्मन को अपनी सीमा के अंदर भी काम करने की आजादी नहीं दी। भारत ने विश्व से आतंकवाद के सभी रूपों को समाप्त करने के प्रयासों को और मजबूत तथा तेज करने का आह्वान किया है। भारत ने कहा कि विश्व आतंकवादियों तथा पाकिस्तान की सरकार और सेना के बीच साठगांठ से अवगत है। पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों के नवीनतम वीडियो पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसी घटनाएं इसे और भी स्पष्ट करती हैं। नेपाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जो फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को वीडियो के माध्यम से अपने आगामी उच्चस्तरीय सत्र को संबोधित करने की अनुमति देता है। अमेरिका द्वारा फलस्तीनी अधिकारियों को वीजा देने से इनकार करने और उन्हें व्यक्तिगत रूप से भाग लेने से रोकने के बाद ये प्रस्ताव पारित हुआ। भारत एक बार फिर विश्व डाक संघ की प्रशासनिक परिषद का सदस्य चुन लिया गया है। संचार मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय डाक व्यवस्था के सुधारों और डिजिटल पहलों में विश्व समुदाय के विश्वास का पता चलता है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि के कारण वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते नेतृत्व का परिचायक है। भारत 1876 से ही विश्व डाक संघ का सदस्य है और अंतर्राष्ट्रीय डाक नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। एस्टोनिया ने रूस पर अपने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप लगाया है। विदेश मंत्री मार्गस साकना ने कहा कि रूस के 3 MiG-31 विमानों ने कल उत्तरी फिनलैंड की खाड़ी में 12 मिनट तक उड़ान भरी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में रूसी दूतावास के अधिकारी को बुलाकर विरोध दर्ज कराया गया है। घुसपैठ को देखते हुए एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टन माइकल ने नेटो में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा है कि 8 और 9 सितंबर को युवा पीढ़ी के नेतृत्व में किए गए आंदोलन और प्रदर्शनों ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार से उपजी युवाओं की असंतुष्टि और आकांक्षाओं को उजागर किया है। राष्ट्रीय दिवस समारोह और संविधान दिवस पर उन्होंने कहा कि ये आंदोलन आंशिक रूप से संविधान की भावना के अनुरूप सुशासन, समृद्धि और विकास में कमी तथा युवाओं में बढ़ती कुंठाओं तथा अपूर्ण उम्मीदों के कारण हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।